आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477।
बाल उत्पीड़न, यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर हम बातचीत करने से हिचकिचाते हैं या फिर बात ही नहीं करना पसंद करते, खासकर तब जब पीड़ित बालक हमारा कोई अपना या हमारी जान पहचान वाला हो। और श्रोताओं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऐसा करके हम पीड़ित बच्चे के मन में पल रहे डर को और बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ उस गुनहगार को भी और शय मिल जाती है गलत काम करने के लिए। जबकि हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों को उस परिस्थिति से बाहर लाने के साथ साथ उनका मनोबल बढ़ाएं, जिसके लिए मनोविशेषज्ञ या किसी एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन की मदद ली जा सकती है और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे उसे सबक मिले तथा अन्य आपराधिक गतिविधियां करने वालों को भी सावधान किया जा सके। यदि एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से देखें तो आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा के दर्ज मामले जो कि 1,28,531 थे और गत वर्ष में और भी इसके मुकाबले बढ़कर 16.2% की बढ़ोतरी के साथ 1,49,409 हो गए हैं। अत्यधिक मामले 12 से 16 साल के भीतर के किशोर लड़कियों के साथ हुए हैं। लड़कियों के साथ हुए यौन अपराध पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम के तहत दर्ज किए 99% से अधिक मामले हैं। इसके अलावा और भी इस तरह के बाल शोषण या उत्पीड़न के मामले हमारे देश में देखने को मिलते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर किए जाने वाला शोषण बाल दुर्व्यवहार या बाल शोषण कहलाता है। हालांकि हम बाल शोषण में सामान्यतः यौनिक व शारीरिक शोषण को ही शोषण समझते हैं, जबकि मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। ऐसे में इन बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार अति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में हर तरह से डर समा जाता है और हीन भावना घर कर जाती है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, जिससे वे वापस सामान्य जीवन जी सकें और अपने जीवन की पुरानी बातों को भूलकर एक सामान्य और आशापूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। तो श्रोताओं, आज हम हमारी कहानी के माध्यम से कुछ ऐसा ही आपके सम्मुख पेश करने जा रहे हैं और उम्मीद है आपके लिए ये लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की कहानी।
अरे ममता, कहाँ है मेरा नाश्ता? आज मैं फिर तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगा।
आई बाबा, सब कुछ तैयार है, आप बैठिए तो सही। नाश्ता तो कब से तैयार है, पर आप और आपकी लाडली बेटी खुद देर से तैयार होते हो और दोष मुझ पर डाल देते हो। और जरा अपनी लाडली खुशी को बुला लो, ना जाने अपने कमरे में क्या कर रही है।
खुशी, खुशी बेटा, कहाँ हो? जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मुझे तुमको स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाना है। आ जाओ बेटा।
आई पापा।
क्या बात है खुशी, आजकल रोज तुम देरी से तैयार होती हो और डांट मुझे पड़ती है तुम्हारे पापा से कि मैं देरी करवाती हूँ। थोड़ा जल्दी तैयार हो जाया करो बेटा।
ठीक है मम्मी।
सुनिए, आप ही जरा बात करना अपनी लाडली से, मुझसे तो कुछ कहती नहीं पर उदास रहने लगी है कुछ दिनों से।
ठीक है, मैं ही बात कर लूंगा, तुम जल्दी से टिफिन दो हम दोनों का। बेटा खुशी, क्या बात है? तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम आजकल उदास उदासी रहती हो, क्या बात है बेटा? अपने पापा को नहीं बताओगी?
कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही।
कुछ तो है बेटा, क्या पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है? पर तुम तो हर विषय में होशियार हो।
नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो बताओ ना बेटा, कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है।
हाँ पापा, वो हमारे फिजिकल एजुकेशन के सर है ना, जो हमें योगा सिखाते हैं। हाँ वो ना।
वो वो क्या बेटा, डाटा क्या उन्होंने तुम्हें?
नहीं नहीं पापा।
खुशी बताओ मुझे, डरो मत।
पापा वो जब भी योगा करवाते हैं तो मेरे पास आकर अजीब तरीके से मेरे गाल छूते हैं और मेरे कंधे पर और मेरी टांगों को भी अलग तरीके से छूते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
क्या ये बातें तुमने अपनी मम्मी से क्यों नहीं कही या मुझे क्यों नहीं बताया?
पापा पापा मैं बहुत डर गई थी क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले सर हैं। सब बच्चे उनसे बहुत डरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता उनके सामने।
पर बेटा ये बात तुम्हें हमें जरूर बतानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, तुम आराम से स्कूल जाओ और आज ऐसी कोई भी बात हो तो तुरंत स्कूल के रिसेप्शन से मुझे फोन करवाना और मैं और तुम्हारी मम्मी तुरंत आ जाएंगे। इस योगा टीचर के बच्चे को तो अब हम योगा सिखाएंगे।
अरे आप वापस आ गए, क्या हुआ आज ऑफिस नहीं जाना क्या?
तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी मेरे एक जान पहचान के इंस्पेक्टर साहब से मिलने जाना है।
पर मेरा क्या काम वहाँ, आप बताइए तो सही आखिर बात क्या है?
तुम चलो तो सही, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ।
अरे सुनील जी आप यहाँ कैसे, सब ठीक तो है?
नमस्ते इंस्पेक्टर साहब जी, सब ठीक, बस आपसे सलाह लेना चाहता था। दरअसल मेरी बेटी खुशी जो अभी 11 साल की है उसके स्कूल में एक योगा शिक्षक है जिसे आपकी भाषा में योगा सिखाना है।
अच्छा तो यह बात है, आप चिंता ना करें, इस मामले में हम एनजीओ की भी मदद लेनी पड़ेगी। मेरी जानकारी में एक एनजीओ की कार्यकर्ता है जिनसे मेरी जान पहचान है, चलिए हम सब उन्हीं से मिलने चलते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में।
तीनों मिलकर एनजीओ ऑफिस में जाते हैं जहां उन्हें मानसी जी जो कि एनजीओ कार्यकर्ता है से होती है, जिनसे मिलकर वे सारी बात बताते हैं।
तो ये बात है, देखिए मैं तो यही कहूंगी कि बिना किसी सबूत के हम स्कूल अधिकारियों से जाकर कोई भी बातचीत करेंगे तो वह शिक्षक के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे क्योंकि ये उनके स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल होता है, इसलिए हमें कोई ना कोई सबूत जुटाना ही होगा।
तो मानसी जी आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए, आखिरकार यह हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है।
हाँ मानसी जी, अब आप ही बताइए कैसे उस योगा शिक्षक के बच्चे को सबक सिखाया जाए।
हाँ मानसी जी, बस एक बार सबूत हाथ लग जाए तो फिर थाने में ले जाकर करवाऊंगा इस योगा के शिक्षक के बच्चे को योगा।
उपाय तो है पर जरा जोखिम भरा है, यदि किसी तरह उस शिक्षक की ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड कर सकें तो हमारे लिए काफी है उसे गुनहगार साबित करने के लिए।
मानसी जी क्यों ना हम स्टिंग ऑपरेशन की मदद लें, इससे हमारे पास जीता जागता सबूत होगा उस शिक्षक के खिलाफ।
हाँ यही ठीक रहेगा।
पर इसके लिए हमें क्या करना होगा और यह स्टिंग ऑपरेशन आखिर है क्या?
देखिए यह एक तरह का भ्रामक ऑपरेशन है जिससे अपराध करने वाले का प्रयास करने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक तरह का कैमरा सर्विलेंस पेन कैमरा के साथ आता है जिसके जरिए आप वीडियो और वॉइस यानी आवाज दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पेन का इस्तेमाल आप अपनी शर्ट की पॉकेट में रखकर कर सकते हैं जिससे सामने वाले को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाद में इस पेन में छिपे मेमोरी कार्ड को किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़कर रिकॉर्डिंग को देखा व सुना जा सकता है।
अरे वाह ये तो बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है, क्या इसे हम खुशी की स्कूल ड्रेस पर लगा सकते हैं मानसी जी?
जी हाँ ममता जी, इसे आप आसानी से बिटिया की शर्ट की जेब में लगा सकती हैं क्योंकि दिखने में यह एक साधारण सा पेन दिखता है।
और बस हमारा काम हो जाएगा।
अगले दिन ममता और सुनील ने वैसा ही किया और वही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था और अब सबूत उनके हाथ में था। बस फिर क्या था, तुरंत उन्होंने इंस्पेक्टर साहब और एनजीओ कार्यकर्ता मानसी जी के साथ स्कूल अधिकारियों के सामने सारी बात रख दी और सच्चाई सामने आने पर उस योगा शिक्षक को नौकरी से निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे हिरासत में ले लिया गया। आज खुशी बहुत खुश है क्योंकि अब वो उस मानसिक तनाव से बाहर आ चुकी है, पर अभी भी कुछ ऐसा है जो उसे परेशान करता है।
खुशी बेटा, तुमने दूध नाश्ता ले लिया?
हाँ मम्मी, बस थोड़ा सा स्कूल का काम बाकी है, वही पूरा कर रही हूँ।
ठीक है बेटा, थोड़ी देर बाद पार्क में खेल के आओ।
हाँ मम्मी, बस अभी जाती हूँ।
अरे खुशी, तुम इतनी जल्दी आ गई?
हाँ मम्मी, बस मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर।
क्या हुआ मेरी बेटी, तो उदास क्यों है मुझे बता। बेटी मैं तेरी माँ हूँ।
मम्मी, आज जब मैं खेलने गई थी तो मेरे सभी दोस्त आए थे, बस एक को छोड़कर।
कौन बेटा, कौन से दोस्त की बात कर रही हो?
वो, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, वो कभी कभी ही आता है पर आज नहीं आया था।
तो क्या हुआ, हो सकता है उसे उसकी मम्मी ने ना भेजा हो खेलने, या फिर कहीं गया हो अपनी मम्मी पापा के साथ। तो इतनी चिंता ना कर, कल खेल लेना उसके साथ जब वो आएगा।
पर मम्मी, उसके तो मम्मी पापा है ही नहीं।
क्या मतलब?
मम्मी, उसने ही बताया था एक बार, वो तो वहाँ पार्क के पास एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम करता है और जब कभी भी उसे मौका मिलता है तो वो हमारे साथ खेलने आ जाता है।
पर बेटा, वो तो तेरी उम्र का होगा, भला वो फैक्ट्री में काम कैसे कर सकता है?
पता नहीं मम्मी, उसने तो ऐसा ही बताया था अपने बारे में। और हाँ मम्मी, उसने ये भी बताया था कि वो जो वहाँ के सेठ है ना, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए तो उनको सजा मिलती है और कभी कभी तो ठीक से खाना भी नहीं देते।
यह तो बहुत गलत बात है, भला इतने छोटे बच्चों से फैक्ट्री में कोई कैसे काम करवा सकता है। पर तू चिंता ना कर, मैं आज ही तेरे पापा से इस बारे में बात करूंगी।
पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानते।
हाँ, पर हम कुछ तो कर ही सकते हैं उस बच्चे के लिए, आखिर हमारी बेटी जैसा छोटा बच्चा ही तो है और समाज के प्रति हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है।
हाँ सही कह रही हो तुम, मैं कल ही उन इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ और फिर वह जो भी उचित समझे।
अगले ही दिन सुनील इंस्पेक्टर से जाकर मिलता है और सारी बात उन्हें बताता है और फिर एक बार वे मानसी जी से मिलते हैं और सभी की सूझबूझ और समझदारी से उस फैक्ट्री में छापा मारा जाता है जहां कांच की चूड़ियां बनाने का काम होता था और इस बच्चे जैसे कितने ही बच्चे उस फैक्ट्री में काम करते थे, उन सभी बच्चों को वहां से निकाला गया तथा एनजीओ की मदद से उनमें से कई बच्चों को सही सलामत उनके घर भेज दिया गया और जिनका कोई अपना नहीं था उन्हें भी एनजीओ की मदद से अनाथ आश्रम भिजवा दिया गया, जिनमें से एक खुशी का दोस्त भी था जिससे आज भी खुशी कभी कभी अपने माँ बाप के साथ मिलने जाती है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? उम्मीद है आपको भी आज के इस कार्यक्रम के द्वारा उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी।
तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगर आप अपने अनुभवों को हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमसे साझा करना चाहते हैं, जी हाँ, तो हमें जरूर लिखें। हमारा फोन नंबर है
8826224477, जी हाँ 8826224477। नमस्कार।